नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं से संबंधित वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली छावनी बोर्ड ने स्वच्छता निगरानी और स्वचालित रिपोर्टिंग उपकरण स्मार्ट का शुभारंभ किया और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। तरनजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। नई दिल्ली के लोक निवास में आयोजित एक समारोह में आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल मंत्रियों के साथ उपस्थित रहीं। शपथ ग्रहण के बाद श्री संधू ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सेवा करना जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहर के विकास के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
दिल्ली के बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे बड़े आप भी हैं, लोग भी हैं। दिल्ली ही मेरी कर्म भूमि रही है, तो हम सबका यही फर्ज है कि हम इकट्ठे होके दिल्ली की डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री का एक सपना है भारत के लिए और दिल्ली उसकी राजधानी है, हमें दिल्ली को उस लक्ष्य तक पहुंचाना है। हम सब, आप सबकी, सब स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली के चैलेंजेस जो बढ़ते रहेंगे, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बनाना हम सबका फर्ज, हम उसी तरफ फोकस करें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सीएम जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी प्रगति को रियल टाइम में देख सकते हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र की प्रगति और जन सुविधाओं को लेकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान श्री सिरसा ने स्थानीय समस्याओं को समझा और उनके तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जल संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नई दिल्ली में चल रहे जल महोत्सव 2026 के हिस्से के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नागरिकों से जल का इस्तेमाल एक अमूल्य खजाने की तरह करने का आग्रह किया। सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रपति ने जल संरक्षण को न सिर्फ एक अभ्यास बल्कि जीवन की एक शैली बनाने का आह्वान किया।
हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के ग्रामीण युवा और महिलाओं को जल आपूर्ति प्रणाली के रखरखाव और परिचालन में सक्रिय साझेदार बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जल परीक्षण और संचालन तथा अन्य रखरखाव के कार्यों में भागीदारी बनाया जा रहा है। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की प्रतिबद्धता और लगन से महिलाओं के जीवन में और समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 3 दिन के सम्मेलन का विषय है प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ एमएल जाट ने बताया कि ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में होगा। ये वस्त्र क्षेत्र में व्यापार, निवेश और नेटवर्किंग के लिए एक प्रमुख मंच है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत प्राकृतिक रेशों के केंद्र के रूप में उभरेगा। वस्त्र मंत्री ने बताया कि इस आयोजन में 141 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। श्री गिरिराज सिंह ने इस अवसर पर भारत नेक्स्ट 2026 का सूचना पत्र जारी कर वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बग बाउंटी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को प्राधिकरण के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म में संभावित कमजोरियों की पहचान करने की अनुमति देता है। दिल्ली छावनी बोर्ड ने स्वच्छता और नागरिक सेवाओं की निगरानी में अधिक प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाने के लिए छावनी क्षेत्र में स्वच्छता निगरानी और स्वचालित रिपोर्टिंग उपकरण स्मार्ट का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये डिजिटल समाधान मैनुअल रिपोर्टिंग, डेटा संग्रह और निगरानी में देरी के कारण बोर्ड को होने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक प्रायोगिक पहल के रूप में इसमें AI सक्षम विश्लेषणात्मक क्षमताओं को एकीकृत किया जा रहा है। ये क्षमताएं स्मार्ट को मानवीय हस्तक्षेप को कम करने, परिचालन डेटा का विश्लेषण करने, बार बार आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए त्वरित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
दिल्ली मेट्रो ने आज शास्त्री पार्क में लगभग 100 महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को व्यावहारिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण और निजी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बनाना है। इस दौरान एक प्रशिक्षण सत्र दिल्ली पुलिस के महिला और बाल विशेष इकाई द्वारा आयोजित किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा है कि शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि को दिल्ली यात्री आरक्षण प्रणाली PRS की सेवाएं 3 घंटे के लिए बंद रहेंगी। इसके अंतर्गत उत्तर रेलवे की PRS की हेल्पलाइन नंबर 139, पूछताछ सेवा, असाधारण डेटा रिपोर्ट और दिल्ली PRS सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्री आरक्षण प्रणाली की कार्यदक्षता और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने तथा कागजी दस्तावेजों को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केशवपुरम जोन में 2 वाणिज्यिक संपत्तियों को आज कुर्क किया गया। ये दोनों संपत्तियां पश्चिम विहार और GT करनाल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं और इन पर कुल 1 करोड़ रुपए से अधिक का संपत्ति कर बकाया था। नगर निगम ने संपत्ति कर बकायेदारों को सलाह दी है कि वे चल रही सुनियो योजना का लाभ उठाते हुए अपना लंबित संपत्ति कर जमा करें, जिससे संपत्तियों को कुर्क किए जाने जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। ये योजना केवल 31 मार्च 2026 तक ही मान्य रहेगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने भूमि आवंटियों को अधिकारों के मुद्दे पर एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अंतर्गत कृषि भूमि के आवंटियों को भूमिदारी अधिकार प्रदान करने से संबंधित विषय को मंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया। इस पर श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए विषय पर संबंधित विभागों के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे समय से इस विषय को लेकर आवंटी परिवारों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। इसके अलावा श्री सिंह ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना के साथ कार्य कर रही है। राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में देश के पहले गहन चिकित्सा क्लिनिक फॉलोअप का शुभारंभ किया जाएगा। इस पोर्टल का उद्घाटन सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल करेंगे। ऑनलाइन फॉलोअप क्लिनिक ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल पर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल पर आईसीयू से स्वस्थ हुए मरीजों और उनके परिजनों को ऑनलाइन लॉगिन करने और सफदरजंग अस्पताल के क्रिटिकल केयर चिकित्सकों से परामर्श करने की सुविधा मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 32 वर्षीय एक व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। न्यायालय ने पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा में पड़े व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसी मरीज को जानबूझकर मरने देने की प्रक्रिया है जिसमें जीवन रक्षक यंत्र या उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक उपचार को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। गाजियाबाद के रहने वाले पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश राणा को 2013 में अपनी पीजी की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद से वे एक दशक से अधिक समय से कोमा में हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एम्स दिल्ली को राणा को उपशामक देखभाल इकाई में भर्ती करने निर्देश दिया जिससे चिकित्सा उपचार बंद किए जा सकें। राणा के परिवार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके माता पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में तैनात अपने ही एक अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि आरोपी अधिकारी ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत पर कार्रवाई न करने के बदले एक निजी व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि खेल मात्र हार जीत नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और युवाओं के बीच एकता की भावना जागृत करने का सशक्त माध्यम है। विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात आज अशोक शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कही। श्री गुप्ता ने प्रतिभाओं को निखारने और समुदाय को स्वस्थ तथा रचनात्मक गतिविधियों से जोड़े रखने में जमीनी स्तर के खेलों के महत्व पर जोर दिया। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 13 मार्च तक चलेगी। एक रिपोर्ट।
पेरिस 2024 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, प्रवीण कुमार और मरियप्पन थंगावेलु सहित भारत के शीर्ष पैरा एथलीट के इस प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के एथलीटों के लिए 74 अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्लॉट उपलब्ध होंगे। भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र सहित 8 देश के एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भारत ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में सबसे अधिक 219 एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। भारत ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य सहित कुल 134 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। प्रादेशिक समाचार के लिए स्पोर्ट्स डेस्क से मैं प्रशांत कुमार।
दिल्ली 2027 में तीरंदाजी एशिया कप के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा। भारत को 22 वर्ष बाद पहली बार शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। राजधानी के मौसम पर अब गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। हालांकि कल भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। दिल्ली छावनी बोर्ड ने स्वच्छता निगरानी और स्वचालित रिपोर्टिंग उपकरण स्मार्ट का शुभारंभ किया और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।